दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 40 को पाठ करेंगे।
एयरप्लेन मोड
नेहाविक्रमणासोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहाभिक्रमणासोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहाभिक्रमणासोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् सदार्थ ना नहीं यह इस योग में अभिक्रमण प्रयत्न करने में नाश अस्ति हानि है प्रत्यवाय नाश ना कभी नहीं विद्यते है स्वल्पम थोड़ा सा अभी भी अस्य धर्मस्य इस धर्म का त्रायते मुक्त करता है महता भयान महान भय से। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही नाश, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तात्पर्य कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावना वृत्ति में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर आरंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है, अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे वह कर्म अधूरी ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है, अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में आपने कर्तव्य का कुछ ही 1% पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में 17 नंबर श्लोक में कहा गया है, त्यक्त्वा स्वधर्म चरणामुजं हरे भजन उपकथो पततो यदि यत्र क्व वा अभद्र आभुधामस्य किं कोपार्थ आप्तो अभजतां स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म को छोड़कर कृष्ण भवनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण पीछे गिर जाता है, तो इसमें उसका हानि क्या है? और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है तो इससे उसका क्या लाभ होगा? अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा? भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर से विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी माने कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। ओम ज्ञानान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश श्रीरूपं साकृजातं सहगणं रघुनाथं दंशजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीसीताराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखानिदंश। नमो विष्णुपादाय कृष्णक्लिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी उपस्थित भक्तगण भक्तगण को आज के आपके शनिवार के प्रीति भोजन कार्यक्रम में जो सायंकालीन सत्संग का प्रभाव है, इसके लिए इस्कन फरीदाबाद की तरफ से आप सभी को स्वागत किया जाता है। हरे कृष्ण। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को इस दूसरे अध्याय में आत्मज्ञान समझाते हैं। तो इस श्लोक के पूर्व में भगवान अर्जुन को कहे थे कि बुद्धि युक्त या पार्थ कर्म बंधक हास्यसी, इस बुद्धि योग के द्वारा आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। बुद्धि से युक्त होकर कर्म करने से कर्म के बंधन से छूट जाओगे। इस बुद्धि योग है भक्ति योग। तो अर्जुन सोचे, आप कहते तो सही, आपके कहने पर मैं भक्ति बन करके भक्ति काम करूंगा, भक्ति की भजन काम करूंगा, सब काम छोड़ करके आपको भजन करूंगा, लेकिन क्या गारंटी है भजन मेरा पूरा हो जाएगा? कहीं फिर फंस गया तो भजन तो पूरा नहीं हुआ, घर तो छूट गया, नाम आया ना राम, इधर से तो घर परिवार छोड़ दिया, आके बाबा जी बन गया, और इधर से बाबा जी के काम में भी बिगड़ गया, पूरा नहीं करता। अब बीच में फंस गया, अब क्या कर, उसका कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगा, कुछ रिएक्शन तो नहीं होगा, बेकार तो नहीं होगा, जब उनमें क्या स्थिति हो। अब अर्जुन के मन में ये संशय आ रहा था कि भगवान जो ठोस लेकर कहते हैं कि तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे इसके कर्म में ना मैं करूंगा, लेकिन काम पूरा करने से सीधा बंधन से मुक्त होगा, काम पूरा नहीं होगा, बीच में मेरा गड़बड़ हो गया तो है ना, फिर कौन संभालेगा मुझे, ना इधर ना उधर। इस प्रकार के संशय को भगवान तो अंतर्जामी है, समझ गए अर्जुन भवन में ये शंका। तो इस शंका का समाधान करने के लिए भगवान ने ये श्लोक कहते हैं। अर्जुन का मन में तो ऐसा शंका था इसलिए कहे, लेकिन हम लोग जितने हमारे देश से दुनिया में लोग हैं, हमारा एक सहजात स्वभाव है, हमको कुछ काम करने के लिए बोलो, कितने अच्छा काम बोलो भाई ये करो अच्छा है, लेकिन हम इस काम करने के लिए राजी तभी होंगे जब हमको अच्छे तरह से समझ में आ जाए उससे फायदा क्या है ना। आप बोलो भाई आप ये काम करो मतलब क्या फायदा है, आप नियम क्या फायदा है, आप भजन करो क्या फायदा है, जब तक फायदा पता ना चले फिर कम नहीं ज्यादा कंपेयर करें, देखेंगे इसमें इसमें क्या है, जब तक फिर सोचेंगे आते वक्त करना चाहिए, नहीं तो कभी नहीं है ना। तो भगवान अंतर्जा में हाने को होने के नाते हम सभी का मन की बात को जानते हैं कि ये जो लोग हैं जगत के वो तो बिना फायदे में आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो भगवान चलो उनको फायदा की बात कुछ बता दिया जाए। तो भगवान इसलिए ये श्लोक को कहते हैं, किसी का शंका के समाधान हो और किसी का मन में उत्साह आए कि नहीं काम करना चाहिए, इतने फायदा है काम का चीज। तो भगवान अपने भक्ति योग का एक प्रकार फायदा बताते हैं, महिमा बताकर कहते हैं, ना यह अभिक्रम नाश अस्ति नेहा विक्रम नाश अस्ति, नेहा मतलब ना यह, इसमें नहीं, क्या नहीं, अभिक्रम अभिक्रम मतलब शुरुआत, शुरुआत करने पर भी नाश नहीं होगा। भगवान इस श्लोक में तीन विशिष्ट बात कहते भक्ति योग के बारे में, तीन फायदे की बात बता रहे हैं, हम तीन को एक एक करके चर्चा करेंगे। इस श्लोक में तीन मुख्य विषय कहे उन्होंने, एक तो बोले ना यह अविक्रम नाश अस्ति नेहा विक्रम नाश अस्ति, एक दूसरा के प्रत्यवाय विद्यते, तीसरा स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। पहले फायदा है इस प्रकार धर्म की व्याजन में, इस भक्ति धर्म को करने से, अब करा तो नहीं अभी शुरुआत ही किया, थोड़ा सा ही किया अभी, अब फिर छूट गया तो नाश नहीं है, वो रहेगा फिट नहीं सकता अविनाशी, उसका शुरुआत का भी नाश नहीं होता, वही बने रहता है। दूसरा है प्रत्यवाय निवृत्ति, प्रत्यवाय मतलब उल्टी प्रतिक्रिया, उल्टी परिणाम, गड़बड़ी हो गया तो उल्टी रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा, नहीं उसका कोई उल्टी रिएक्शन नहीं। तीसरा अगर वो पूरा नहीं कर पाया, अरे पूरा के बाद तो छोड़ो, आधा 1% भी करो तब भी बहुत बड़े भय से बचा देगा आपको। ये तीन महान फायदा की बात बता रहे हैं भजन करने के। सबसे बताते हैं ना यह अभिक्रम नाश अस्ति, इस भक्ति धर्म में अभिक्रम मतलब शुरुआत किए, शुरुआत किए और किए नहीं तो उसका भी नाश नहीं होगा, लेकिन उसको छोड़ करके, इस भक्ति कर्म को छोड़ करके जावतीय प्रकार के सांसारिक भौतिक धर्म कुछ भी करो, कुछ भी करो, शुरुआत करने से कुछ फायदा नहीं, आधा करने से कुछ नहीं होगा। जब तक पूरा ना हो एक कोई काम के लायक नहीं ना, कुछ भी करो। जैसे आप लोग को स्टूडेंट है, इधर आप लोग का सब इच्छा है डिग्री पूरा करेंगे तब नौकर बनेंगे, है ना नहीं? अगर आप बोलेंगे चलो जैसे भी तैसे पैसा इकट्ठा करके बहुत सारा धन देकर एडमिशन कर लिया, चलो बहुत झटक करके इधर से लोन लान देकर एडमिशन कर लिया, बोलो चलो अब तो हो जाएगा काम, हो जाएगा नहीं, चार साल तक गुजारा करना पड़ेगा, सारे एग्जाम देना पड़ेगा, फिर इतने भी नहीं जब तक सर्टिफिकेट मिलना आ जाए पूरा तब जा करके, नहीं तो केवल एडमिशन करने से कुछ नहीं, बेकार जाएगा। और एडमिशन करके छोड़ दिया था कोई काम का है, गया एडमिशन करके एक साल दो साल पढ़कर छोड़ दिया तो तब भी गया, पूरा चार साल पढ़कर परीक्षा में फेल गया तो भी गया, परीक्षा में पास करके अभी सर्टिफिकेट नहीं आया तो तब भी नहीं। किसी प्रकार से 100% पुराना हो जाए, पूरा होने पर भी डाउट नहीं हो रहा, पूरा नहीं होने तो क्या बचे, कुछ भी काम ले लो आप। ये फरीदाबाद जैसा बड़े शहर में इच्छा बोलते हैं, इस शहर में आप रुकेंगे रहने के लिए, पूरी जायदाद लगा करके लाखों रुपया में प्लॉट खरीद लेंगे, बोला अब तब ले आप तो फरीदाबाद पास कर लो, प्लॉट खरीदने रह सकते हैं इधर नहीं जी, प्लॉट ही उनसे कैसे रहेंगे, फिर नहीं अभी काम करो तो फाउंडेशन खुदाई की दीवार उठा दी अभी रखेंगे नहीं, जब तक घर बनकर कंप्लीट ना हो जाए तब एक रहने का नहीं। तो कुछ भी काम ले लो, जो कार्य पूरा नहीं होगा तो बेकार जाएगा, अधूरा बेकार जाएगा, शुरुआत तक कैसे, लेकिन एक ऐसी कार्य भक्ति है आप पूर्ण करना तो बात ही छोड़ो, आधा करना भी छोड़ो, शुरुआत ही किया आज ही किया तो ये रहेगा अविनाशी। आप आज ये मई महीना ना 2015 के मई महीना के 23 तारीख के रात को 8:30 बजे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया, ये रिकॉर्डेड हो गए, आप 2-4 जन्म तक घर फंस गए थे, 4 जन्म के बाद फिर आपको मन किया तो शुरुआत नहीं होगा, दो से शुरू होगा कि एक अब तक है वो मिट नहीं सकता, फिर दूसरे नाम से शुरू होगा ये मिट नहीं सकता, आपका रिकॉर्ड यहां बिल्कुल आज भी स्ट्रेट रहेगा, नहीं और एक बार काम लिया वो कैसे मिट सकता, मिट नहीं सकता, उसका नाश हो नहीं सकता, थोड़ा सा भी किया रहा वो नहीं मिट सकता, कुछ भी थोड़ा सा भी करो उसका नाश नहीं हो सकता, बल्कि उसको छोड़कर जितने प्रकार की कर्म है जब तक 100% ना हो तब का उसका कोई फायदा नहीं, सर्व काम हो जाएगा, तो कितने बड़े काम की चीज है, मन में उत्साह आता ना, अरे भाई काम शुरू तो कर दो कम से कम रहेगा तो सही, शुरू कर दो बाद में पूरा हुआ नहीं होगा छोड़ो, तुम शुरुआत करने से भी इतना फल है तो पूरा करने के बाद ही क्या है ना। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद में दूसरे श्लोक में, प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत के अधिकारी को चयन किया गया, कौन भागवत का अधिकारी है भागवत सुनने का, तो इस प्रकार अधिकारी निर्णय करके व्यासदेव जी कहते हैं कि कोई इस भागवत को अगर विमर्श भाव से केवल सुनने के लिए मन में विचार किया है ना। तो सुनने के लिए मन में विचार किया, अभी सुने नहीं, बोले मैं भागवत सुनूंगा। ऐसे मन में विचार किया तो क्या फल होगा? बोलते हैं ऐसे शुभ विचार मन में आने से साक्षात श्री हरि उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे तत्क्षण, अवरुद्ध दे तत्क्षण। सुश्री तत्क्षण, अभी सुने नहीं, सुनने का विचार किए, इतने में ही हरि आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे। अवरुद्ध होने का आपसे समझते क्या होता है? अवरुद्ध मतलब हिंदी शब्द है, जैसे आप लोग के घर में बैठे हाल में और जितने सारे खिड़की दरवाजा सारे प्याग बंद करके बाहर से ताला लगा लगा तो आपको बाहर में अवरुद्ध हो गए, उपाय नहीं बाहर निकलने के लिए, सारे द्वार बंद हो गए, अवरुद्ध हो गए, आम अंदर फंस गए, इसी कहते अवरुद्ध होना। तो इसी प्रकार भगवान हरि आपके जब भागवत सुनने का भक्ति करने का विचार किया, हरि आपके हृदय में घुस जाएंगे और सुनने का विचार किया तो बंद हो गया रास्ता, निकल नहीं पाएंगे, वहीं रहेंगे अवरुद्ध होकर रहेंगे। ये भक्ति का इतने प्रभाव है। अगर सुने, सुन करके इसको माने, मान करके इसको करे, तब तो इस प्रकार इस धर्म में केवल मात्र शुरुआत थोड़ा सा भी किया जाए तो उसका टिकाऊ फल है, कभी नष्ट नहीं होगा, किसी प्रकार से नष्ट नहीं होगा, कोई उपाय से उसको नष्ट किया भी नहीं जा सकता ना। कई प्रकार और कार्य होता है, अगर ठीक से नहीं किया गड़बड़ हो गया, आग में जल जाएगा, पानी में बह जाएगा, सूख जाएगा, उड़ जाएगा, ये होगा, घट जाएगा, कोई मरने का, मिटने का, जलने का, धोने का, बहने का, किसी प्रकार से नष्ट होने का उसका सवाल है ही नहीं, कोई शक्ति नहीं कि इस कर्म को मिटा दे, नाश कर दे, अविनाश नहीं मिट सकता। इस कर्म का इतने प्रभाव है भजन का, आप शुरुआत किए दैट्स इट, नहीं मिटेगा, किसी उपाय से उसको उठा नहीं जा सकता। तो ये महान ये फायदा है, फल है भक्ति का धर्म में। दूसरे वक्त है ना अभिक्रम नाश अस्तित्व, शुरुआत का नाश नहीं हो सकता, आगे करो या ना करो, जब भी करेंगे तब वहीं से बढ़ेगा, मिटेगा नहीं। दूसरा फायदा बताते हैं प्रत्यवाय विद्यते, प्रत्यवाय शब्द का अर्थ हमें बताया कि उल्टे फल उल्टे परिणाम। जैसे इस संसार में अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, आप में से कोई डॉक्टर साहब आए नहीं, आए नहीं, 25 साल से डॉक्टर काम करते हैं, बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर सर्जन है, भारी है, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत दिन से काम कर रहे हैं, भाई मिस्टेक कुछ गड़बड़ हो गया तो दवा के बदले वो दवा दे दी, तो क्या होगा? इमीडिएट गड़बड़ हो जाएगा, रिएक्शन होगा ना, नहीं वो नहीं मानेगा, भाई 25 साल से कर रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक तो चलो, ये नहीं मानेगा। आप इलेक्ट्रिशियन हैं, अरे 40 साल से इलेक्ट्रिक काम करते, बड़े मैच्योर इलेक्ट्रिशियन, लेकिन क्या करें भाई, मिस्टेक कभी कभी काम करते करते वायरिंग में दोनों तार मिल गया, नेगेटिव वोल्टेज हो गया, तो इलेक्ट्रिक सोचेगा विद्युत शक्ति के भाई मेरे साथ बहुत दिन से कर रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक चलो भाई छोड़ दो, छोड़ेगा वहीं पर अटैक करेगा, अब नीचे उतरना नहीं पड़ेगा, वहीं पर आप मान सकते है ना, तत्क्षण। इतने हेवी रिएक्शन है उल्टी,
वो तो शक्ति का अवतार, कोई इस क्षेत्र में आप कोई साधना करता है, मंत्र जप कर सिद्धि प्राप्त करने के लिए करता है, करते करते बाय मिस्टेक थोड़ा उल्टा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो गया, लो फल उल्टा हो जाएगा। रावण का भाई एक था कुंभकर्ण, वो दोनों दिनों खूब तपस्या कर रहे थे, तपस्या करके ब्रह्मा जी आए वरदान मांगे, रावण तो अपना जो वरदान मांगा मांगा, कुंभकर्ण जी बोले मैं भाई को सीधा इंद्र बनूंगा, ये तो इंद्रासन मांग रहा था, लेकिन वो गड़बड़ हो गया, बोले इंद्र की सुना इंद्र जी बोले कुछ हो तो सोचते चूहा में थोड़ा सा बैठ गया, तो इंद्रासन बोलते निंद्रासन बोल गया, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गया, क्या मांगा उन्होंने निंद्रासन, हो जाता है मिस्टेक प्रोनाउंसिएशन, बस हो गया परिणाम क्या मिल गया, उसे इंद्रासन मिला, अब सोते ही हजारों साल तपस्या किया था, बोलने में थोड़ा सा खंडी मार गया, लो गया सर सारे हजार साल का तपस्या गया, आप जिंदगी भर उसे पढ़ो गया सोते हो गया, थोड़ी सी मिस्टेक पूरे काम बिगाड़ कर रखे। माता जी लोग फिस्ट बनाते हैं, आज बढ़िया फिस्ट बना है सर, सैटरडे लॉ फिस्ट का, आप बढ़िया सा लस्सी बनाया, गर्मी के समय कितने तो नहीं खाते होंगे, ठंडे लस्सी फस्सी बना देते जो शरबत लस्सी, बढ़िया सा लस्सी बनाए, लस्सी के ऊपर बोले उसका सेंट डाल दो और खासकर गुलाब के जल के गुलाब सेंट बोले और घर टेस्टी स्मेल आ जाएगा, और गुलाब जल नहीं बोला लाइन चला गया था पड़ा था वो किरोसिन ऑयल पड़ा था थोड़ा मिट्टी के तेल डाल दिया, तो क्या पता बोले गुलाब जल हो डाल दिया थोड़ा सा ज्यादा नहीं 50 ग्राम डाला गया, हाँ पूरा बकेट भर के लस्सी था शरबत बना था 50 ग्राम को डाला उसमें, कितना मजा आएगा पीने में है ना, सारे रिकॉर्ड कर खीर बनाएंगे बढ़िया से गाय के दूध मंगा करके गौशाला से बासमती चावल और उसमें क्या चीनी डालो बाकी सब माल मसाला डाल करके बिल्कुल रबड़ी जैसा बना करके बनाए, बाद में वो थोड़ा मसाला डालने की वजह से वो हाथ में चला गया और डाल दी थोड़ा नमक, तो किसी चलेगा टेस्ट सारे बिगाड़ कर देगा, तो इसी बोलते प्रत्यय वाले दोष उल्टे प्रतिफल, अरे अरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सारे बिगाड़ कर देगा, तो इस भौतिक संसार के जो भी कार्य करो अगर बाय चांस कुछ गड़बड़ हो गया, अरे भूल तो स्वाभाविक है, भूल तो होता है, तो क्या गाड़ी चलाता था कितने साल से एक्सपीरियंस ड्राइवर, थोड़ा सा झटकी आ गया तो क्या स्वाभाविक, इतने से होते हैं थोड़ा सा मिस्टेक करते बार तो सीखने के सारे तरह एक्सपीरियंस चौपड़ सर जाए, लेकिन एक मात्र ऐसे धर्म है ऐसे कर्म है जो भजन धर्म है भक्ति धर्म है, उसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक नहीं पूरा तो पूरा मिस्टेक करते जाओ, उसका उल्टे परिणाम होगा ही नहीं बल्कि अच्छा परिणाम, अच्छा करो तो अच्छा तो है ही, अगर बुरा करो तो भी अच्छा, उसमें तो प्रत्येक है ही नहीं किसी प्रकार के ह्रास हानि की बात, उल्टे परिणाम है ही नहीं, फुल प्रूफ है, बहुत बड़े प्रमाण है उसका, आप सब जानते हैं। अभी रामनवमी गया, रामायण के रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि, उनके बारे में कहा गया है उल्टे नाम जपते जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, उन्होंने जानते ना कौन थे, एक बहुत बड़े डाकू सरदार थे, खूब मर्डर किए थे, खूब मर्डर किए जमते, इतने पाप किए थे कि नारद जी ने उनको समझा दिए, बोला सा पाप इतना क्या क्या करूं, नाम जप करना पड़ेगा ना, बोलो कौन सा नाम करूं, बोलेंगे क्या राम नाम करो, उनके मुख से राम उच्चारण नहीं हो पाए, इतने महापापी थे, मुंह से राम शब्द नहीं निकला। नारद जी हद हो गई, यही राम नहीं बोल पाता है, बोले क्या करूं, दवाई और पैसे दू, ऐसे कैंडिडेट है, ऐसे पेशेंट आया कि वो बोल ही नहीं पाता। तो नारद जी जो सुपर फिजिशियन थे, उन्होंने बोला अच्छा तो मर तो हाँ मारते मारते मरना मारवाना ये तुम्हारा काम था, बोले राम ने बोला तो उल्टा बोले मरा, बोले रहा क्यों नहीं बोलो, तो रा से वो नहीं बोला राम का, राम कैसे बोला उन्होंने मरा मरा, उल्टे नाम जपा बिल्कुल उल्टा बन क्या गया, महर्षि वाल्मीकि एक डाकू सरदार मर्डर था, उल्टे नाम जप करके जब रामायण का रचयिता महर्षि वाल्मीकि बन गया, अगर सीधा जपता तो हिसाब लगा दो इतने परिणाम, कितने बड़ी गलती कर दिया हमने, कुछ नहीं। अजामिल ने जिंदगी भर कसकर पाप किया, कुछ कसर नहीं छोड़ा, अंत समय में पड़ा था डेथ बेड में, जमदूत को देख करके इतने डर गया, डर के मारे आपने बेटा को बुलाया नारायण आओ, वो मुझे बहुत डर लगता, उनके बेटा थोड़ी आया, बेटा को बुलाया बेटा तो नहीं आया, आए को नारायण को बुलाया, जबकि उनको नहीं बुलाया था, लेकिन इतने प्रभाव इसमें, इतने प्रभाव। अब आजकल हम लोग अपने बेटों के पोतों के नाम चिंटू मिंटू सिंटू मिंटू क्या क्या रखते हैं, भगवान का नाम नहीं रखते, शायद कभी नाम बुला लेंगे फिर जमदूत से बच जाएंगे, नहीं ऐसा नाम रखें कि जमदूत तो ऐसे ही आए बुलाने पर और तो चला जाए, ऐसे नाम है ना। तो कितने भी गड़बड़ गलती हो जाए बिल्कुल सुधर जाए। एक बहुत बड़ी कथा भागवत में आता है, आप लोग स्त्रियों के लिए सीखने के लायक है, जब भगवान कृष्ण बलराम वृंदावन में आपने लीला कर रहे थे, तो एक बार कार चलाते चलाते थोड़े दूर तक चले, बच्चे थे, वृंदावन से सीमा तक आ गए और मथुरा तक पहुंच गए, मथुरा बॉर्डर तक आ गए, अब बच्चे थे बचपन हंगते हंगते आ गए, यहां तो बोले लाला भूख लग रहा है, कन्हैया भूख लग रहा है, अब इतने दूर आ गए क्या करे, हाँ तो गाँव तो बहुत दूर हो गया, अब क्या करे, कहां मथुरा सिटी बॉर्डर में आ गए, अब को खाना कहां से आएगा, तो कन्हैया बोले रिक्शा करो जाओ, ये ब्राह्मण की बस्ती दिखा पड़ रहा है मथुरा में, मथुरा सिटी में, वहां जाकर देखो ब्राह्मण लोग बहुत सास बास दिखाई पड़ता है, धुआं दिखाई पड़ता है, यज्ञ करते हैं, जाकर उनके यज्ञ में बहुत सारे प्रिपरेशन बहुत आइटम बना हुआ भंडारा, कुछ मांग के ले आओ खाने का उसमें क्या। तो भगवान को कहने पर वो चल गए, सर लड़के गए और जा करके जाके पहुंचे, देखो बहुत भारी सजावट हुई और सब ब्राह्मण चिता चेतन लेकर बैठे हैं, आज सब यज्ञ मंडप सजा हुआ है, जाके ब्राह्मण सब बैठे हैं और सब यज्ञ के बाद पूजा करने के लिए सारे आइटम सब रेडी हो रहा है, तो जाकर के बेचारे हाथ जोड़ के बोले ऐसे हम भूखे हैं और हम कृष्ण बलराम के साथी हैं, हम जब बछड़ा चलाते चलाते रूप से यहाँ तक आगे सब भूखे हैं, कुछ खाने के लिए देखो दो चार रोटी हम खा लें, भूख लग रहा बच्चे हैं। ब्राह्मण बोले बदमाश अभी अमणिया अभी भोग नहीं लगा, अभी से खाने के बारे में आ गया पड़ो यहाँ से, अरे उनके से गाली दिए एक से भगाया के बेचारे जाकर कृष्ण को बोले कि आपको क्यों भेज दिए, ऐसे हम ट्रीटमेंट की उन्होंने ऐसे गाली दी कुछ दिए तो नहीं, बोलती ऐसे देखो भगा बेकार हम लोग कहीं भी आए। तो कृष्ण बोले आप गड़बड़ी कर दी, आप फ्रंट साइड में क्यों गए, मेरे घर पर नहीं जाना चाहिए क्यों, इधर तो ना इधर तो सारे ब्राह्मण बैठे थे, जबकि हम लोग मेन कुंड तो मुख्य द्वार तो ना मुख्य द्वार में जाना ही था, ये सब अवंडर है गड़बड़ी हो नहीं करके कर ठीक ना, दोबारा जहां दोबारा कभी नहीं जाएंगे, कोई इसी तरह नहीं जाएगा, भले भूखे रह जाएंगे नहीं जाएंगे। बोले नहीं आप जाओ, बहुत समझा बोले जाओ तो फिर कैसे जाएंगे, सामने मेन गेट में नहीं गए, पीछे दरवाजे में जाओ, पीछे गेट में जाओ। फिर क्या ना, यहाँ सब उनके ब्राह्मण के पत्नी लोग पूछा कह रहे ना पीछे तरफ से, सामने तरफ से तो किचन नहीं होता, पीछे से किचन है, तो यहाँ सब खान पान सब भोग रेडी करते हैं, उनको जाकर मेरा नाम बताना। बोले कृष्ण बलराम आए हैं, हम उनके साथ हैं, भूखे हैं, वो खड़े हैं कि जंगल में और भूखे हैं, इतना खाने की तबियत चाहते हैं, बस इतना बताना और बाकी मांगना नहीं है, इतना केवल सूचना दे देना, वो आए हैं भूखे हैं इधर खड़े हैं बस, मांगे नहीं घर नहीं मांगो मत, सरल लगता तो मांगो मत, इतना सूचना दे देना। फिर देखो बोले चलो भाई इतना तो करेंगे, बाकी कुछ नहीं मांगे इधर न मत मांगो। तो इस बार बैक साइड पर गए बैंगलोर और जा करके सचमुच देखे कि वो सारे ब्राह्मण पत्नियां हर नाना प्रकार के पकवान को बनाने में लगे हुए हैं, एक बड़े बड़े टोपी भर भर के रखे हैं, पूरी कचौड़ी मालपुआ क्या क्या सब आइटम भर भर के सब रखे, बढ़िया सुंदर स्मेल आता है वो देखने में और घ्राण में। अब जैसे कृष्ण प्रॉम्प्टिंग किए थे जाकर पहुंचे, बोले भैया हम लोग को व्रत से आए हैं और कृष्णाचार्य आ गए, कृष्ण बलराम भी आए, दाऊ का नहीं भी आए हैं, बहुत भूख लग रहा है, भूखे हैं वो इधर ही खड़े हैं बस, इतना ही बोल करके और खड़े बोल बताने गाली बोल देंगे क्या करेंगे, ये तो भोग नहीं था इतनी गाली चढ़ा दी, तो पीटेंगे क्या करेंगे पता नहीं, तो चले आए बच्चे तो चले आए इतना कह करके। तो जितने ब्राह्मण पत्नी उसके एक घर में थे, दूसरे घर वाले उसने सुना कृष्ण बलराम आए हैं, सुना कृष्ण उनका अपना कॉलोनी था, सारे गार्ड सिस्टम कॉलोनी सारे सबको बता दिए, सारे कमर में कस करके और जितने डालियां भर के रखे थे, पूरी कचौड़ी मालपुआ जो भी आइटम बनाए थे सारे टोकरी की टोकरी, अभी भोग लगा ही नहीं, अभी लेकर जाएंगे तुमसे पता डालेगा भोग लगेगा तब जाओगे, कौन पूछता है, पति लोग बैठे वेट करके ए लेकर आओ जल्दी टाइम हो गया, कौन सुने, पीछे दरवाजा खोल करके सारे टोकरी उठा करके चल, सारे को सारे पूरे कॉलोनी में एक भी स्त्रिया नहीं, सब टोकरी अपना अपना उठा करके चले, कोई दो दो टोकरी यहाँ कंधे में एक यहाँ एक दो दो जो भी पॉकेट में छुट रहा है सब क्या कैसे ले लेकर गए, सारे आइटम उठा के ले करके वो पूरा चलपट जा करके वो बड़ल में जहां जंगल में वहां तक पहुंच गए, पहुंच करे कृष्ण के पास सारे आइटम दिए, बच्चे तो देख करके आए थे और भूख भूख लग रहा था, भूख लग रहा है और बढ़िया बढ़िया आइटम सामने देख लो और भूख तेज हो जाए ना, तो खूब पीट करके खाया। अब कृष्ण बोले तो फिर खाना पीना हो गया, अब जब नाम हम नहीं जाएंगे क्यों, अब हमारे पति लोग हम घर में घुसने नहीं देंगे, अरे वो तो पूजा करने के लिए बैठे थे ठाकुर जी को लगा करके सब रेडी करके वो नैवेद्य चढ़ेगा, नैवेद्य के लिए लाने वाले को नहीं, नैवेद्य भी नहीं कोई लाने वाले भी नहीं, अब तो हमारा हाल खराब करेंगे, कितना गाली देंगे क्या ट्रीटमेंट हमारा करेंगे, हम नहीं जाएंगे और हम आपके पास आ गए मत भेजिए, हम नहीं जाएंगे, हमको स्वीकार नहीं करेंगे, इसे गाली देंगे मारेंगे पीटेंगे कुछ करेंगे, रोने लगे सब स्त्री, बोले हम कैसे जाएंगे आपका नाम सुनकर तो हम आ गए अब क्या करें, तो बोले नहीं आप कैसे जाएंगे, अब जाओ कैसे जाए, नहीं बिल्कुल सामना साइड में जाओ, बैक साइड में नहीं सामना साइड में जाओ, नारे वो देखने से गाली देंगे तो भोग ना, आप भोग उसने से पहले आप बोल देना, हम सब लेकर गए थे पीछे से छिप कर कृष्ण बलराम देख रहे, बस बोलना जाकर जाओ तो सही, बिल्कुल राजी नहीं होते थे जाने के, भगवान बोले अब जाओ, आप मुझे ला करके दिए मेरे इच्छा से दिए तो कोई तकलीफ नहीं होगा, भले आपने छिप करके इतने बड़े अपराध करके उनको बिना बोले भाग करके आ गए, वो बेचारे बैठे सुबह से खाए नहीं, ठाकुर को भोग लगाएंगे भोग प्रसाद होगा तब पाएंगे, ना पति की खाना दिए ना ठाकुर जो पूजा हो रहा है में हवन में प्रसाद चढ़ाए, आप पीछे से भाग कर बिना बोले छिप करके सारे पकवान उठाकर यहाँ ला के दे दिए छुड़ेंगे घर वाले, ये तो भारी एक्शन हो जाएगा, बोले आप जाकर तो देखो क्या होता, बहुत समझा हो जाकर कृष्ण भेजे तो डर डर कर फिर आए सर ब्राह्मण, जैसे आए वो तभी तक बैठे थे जाकर घर दस बारह तलाश ले लिया, अरे हरी कृष्ण कहाँ चले गए, कितने आवाज दिए बैठे बैठे, अरे कहाँ हो लेकर आओ भोग लेकर आओ, दस बार आवाज दे कोई शिकायत नहीं पड़ा। फिर उठते तो गए अपना अपना घर में जाकर देख लिया, अरे फिर उसे ही खाली पड़ा है, चूल्हा आग जल रहा है, पढ़ाई बैठा है, गई कहा सब जल रहा है, गई गई कहा गई कहा दरवाजा खुली पड़े, इसको आइटम मिल गई, नौकरी नहीं सुखा ना सिया है ना आइटम है, वो साफ कोई चूल्हा भी जल रहा है खाली पड़ा सब भाग गए। कितने गुस्सा होगा सोच सकते हैं ना, आपके पति फिर ब्राह्मण होंगे, सुबह से नहा कर तो खाए नहीं होंगे, चाय तक नहीं पिए तो बैठे हैं बना कर चुका है, अब तक भोग लगा कर प्रसाद खाएंगे और गुलाब है और आप बना भी रहे, जानते हैं कि वो टेम्पर बढ़ गया होगा उनका, अब कुछ देना है खाने के लिए, अब प्रसाद बना भोग लगा कर तब खाएंगे, अब आप कुछ उनको बिना बोले बिना दिए पीछे से दरवाजा खोल के भाग के चले, और चूल्हा भी गैस चूल्हा आपने की वो भी चल रहा है और भी सब कहीं से खुला पड़ा है, भाग गए। किसका घर में बच्चा सो रहा है, कोई रो रहा है, कुछ उनका कुछ ही वो ध्यान है, सब छोड़ छाड़ के भाग गए। आपके पति बुला बुला के दस बार चिल्ला कर देखिए घर में तलाश लेंगे अब है नहीं, तो क्या उनके मन में क्या होगा, बड़े अच्छा मानेंगे क्या मानेंगे, क्रोध उनका पंचम स्तर पर आ जाएगा, बोलेंगे अच्छा अब तो आने दो है ना नहीं, अब सभी ने वो आकर बोले अरे हमारे घर में भाग गई, अरे हमारे घर में नहीं तुम्हारा ना हमारे में गई, अरे गई तो सारे घर बड़ी खुला करके गई, घर में ही घुस गए ही गया, सारे इकट्ठा हो गए हल्ला करके, इतने सब डिसीजन में बैठे हैं, बताओ ये सारे के सारे एसी जाड़ दिए एसी हो गए, पूरे मीटिंग करके सारे पार्ट ले लेकर के पूरा ताव में बैठे होंगे, और इसलिए वो जानते हैं उनके पत्नी तो बोले हाँ वो तो हम जानते हैं उनको सुबह से खाए नहीं और तो बिल्कुल टेम्परेचर हाई होगा, अब कैसे जाए, लेकिन भगवान को देख करके जब भगवान बोलने पर गए, जैसे पहुंचे ब्राह्मण लोग देखे कि उनके पत्नी आ रही है जंगल से, वहीं से गामछा उठाकर गले में डाल करके दंडवत प्रणाम किए, उनके स्त्रियों को प्रणाम किए, उनके पति ने पत्नी को प्रणाम किए, हाथ जोड़े बोले हमारा जीवन तो बेकार है, हम हार गए, बेकार हो गया हमारा जीवन, हम इतने मंत्र तंत्र तंत्र सुहा सुहा पढ़ करके आग में दे रहे हैं, और जिसके लिए कर रहे हैं असली पुरुष जो कृष्ण है यज्ञ की स्वामी यज्ञेश्वर, उनको नहीं दिए, वो बेचारे खबर भेजे थे उनके आदमी आए थे मारने के लिए, उनको हम डांट देकर भगा दिए, हम इतने बेसरम निर्लज है, क्या पाठ साठ से मंत्र से क्या फायदा है, आपको अपने सही काम की, जो असली यज्ञेश्वर है यज्ञमूर्ति यज्ञ भुक्ता है उन्हीं को आप जा जा करके खिला करके आए, दर्शन भी किए, उनसे बात किए, खिलाए उनको, और हम यहां बैठे बैठे सुहा सुहा कर रहे हैं, ना देखे ना क्या कुछ नहीं कर, हाय हाय करके उनके पत्नियों को पूजा करने लगे। देखिए इस केस में तो उनको घर से निकाल दे मार, उन्हें कितना बड़ा घटना हो जाए, लेकिन क्योंकि उन्होंने कृष्ण के पास गए थे, इतने बड़े कर्म भी उनके धर्मनाश नहीं हुआ, बल्कि उनके चरित्र में बहुत बड़े क्रेडिट मिला, उनके पति लोग आकर उनको पूजा के माफी मांगे, हम नहीं कर पाए, इतने सारे पूजा तपस्या व्रत ध्यान करके हम नहीं कर पाए, जो आप कर लिए, आप जाकर के देखे उनके बातचीत के खिला पिला हमको देखा, उन बाद में समझ में आया। तो इसलिए सचमुच कोई कृष्ण के लिए करे तो किसी भी प्रकार के विपद से, किसी प्रकार के तकलीफ से, किसी प्रकार के उल्टे परिणाम से, किसी प्रकार के भय नहीं, कोई नहीं सकता, अगर सचमुच आप कृष्ण के लिए करेंगे बिल्कुल निडर, कोई नहीं सकता, कोई नहीं सकता। प्रहलाद महाराज एक 5 साल के लड़का थे, कोई गोली चलाना नहीं, बंदूक चलाना नहीं आता था, धनुष बाण भी नहीं लिए थे, तलवार भी नहीं लिए थे, ना उनका कोई सपोर्ट थे, कोई उनके साथी भी नहीं थे, वो उनके विरोध में उनके परिवार, उनके पिता माता, उनके पूरे सैन्य शक्ति, पूरे साम्राज्य उनके विरोध में था, और विरोध करके ऐसा नहीं कुछ किए नहीं, हर प्रकार के कार्य करके कसर कोई छोड़े नहीं थे, हर प्रकार के एक्शन लिए थे, क्या कर पाए? सब प्रकार के उपाय उसको मारने के लिए करते करते 5 साल के निहत्ता लड़का हिरण्य कश्यप का बीपी हाई हो गया, इतने बीपी हाई हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, वो तो सर में हाथ देकर बैठ गया, बोले क्या करूं, ये मेरा बेटा है, अब 5 साल का उम्र का है, अरे मैं हद हो गया, ना मरता ना डरता। अरे कोई लड़का कोई मारने का विचार कर तो भाग जाए, डर के मारे पिताजी मेरे को मारने के लिए आ रहा है ना, भाग जाए, अरे भागता भी नहीं, ना डरता है, अमरता तो ही किसी वजह से। वो इतने चिंतित पड़े, इतने डर गया हिरण्य कश्यप, उनके सारे मंत्रिमंडल पूरे सन्ने सत्य डर गए, मारा सम्राट क्या होगा, उसे तो हमारा हाथ पकड़ लो, उसको तो कुछ होता ही नहीं, अरे बच्चा भी बड़ा होगा, सारे याद रखेगा, हम जो बूढ़े हो जाएंगे वो जवान होगा, पूरे बदला चुका है, हमारी मर गया, क्या करूं, हुई इतने डर गया हिरण्य कश्यप की सीमा नहीं, उसका तो मरता भी नहीं और भूलता भी भूलेगा भी नहीं, मैं अभी उम्र बढ़ रहा है बूढ़ा हो जाऊंगा तो बुरा बदला लेगा, वो सीना नहीं मरता है, मैं मरूंगा, मैं तो डरूंगा। एक दिन बुलाकर पूछा, बोला बेटा सच बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, किसके बल पर तुझे इतना निडर होता है, एक तो तू मरता भी नहीं है, भाई भी तुझे लगता है, किस बल पर तुझे इतना साहस मिलता है, फिर मेरे साथ जाओ तो खड़े हो जाते चुपचाप। बोलेगा पिताश्री और हाउस देखिए, उसी से सप्लाई आता है आपको भी मुझे भी, फिर कौन सा पावन से ना श्री हरि, कभी नहीं मैं हरि से कभी नहीं बोलता, वो हमारा शत्रु है, वो देने पर नहीं लूंगा मुझे ना, हमारा उनका पड़ता नहीं, उनसे भी क्यों बोल सकती, उनसे कभी नहीं बोला, तुझे भले देता होगा मुझे कभी नहीं बोला। बोले पिताजी आप मानो ना मानो तो ही रहे, तो जो भी हो केवल भगवान के शरण में थे, भगवान की भक्ति उनके नाम जप कर रहे थे, तो पूरे साम्राज्य सैन्य शक्ति राज परिवार राजा प्रजा सारे हत हो गए, कुछ नहीं कर पाए, उनका मर गए सारे मिट गए, तो उनका कुछ नहीं हुआ, 5 साल के निहत्ता लड़का हुए कुछ नहीं कर। तो ये भगवत धर्म का भक्ति का ये प्रभाव होता है, किसी प्रकार में उल्टी परिणाम नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार का विपद नहीं, किसी प्रकार के नाश का भी रास का भी हानि का भी सवाल ही नहीं। अच्छा ये बात है, और क्या न स्वप्नमपि अस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी करे क्या परिणाम होगा, त्रायते महतो भया, महान भय से बचा देगा। आप लोगों को सबसे बड़ा भय क्या लगता है, डर है ना, नहीं भय होता नहीं ना, नहीं आपसे भय से बचे, आप लोग से निर्भय है ना, भय लगता है आपको, लगता है कितने कितने भय लगते हैं, कितने प्रकार के भय है, 1, 2, 3, 4 ज्यादा नहीं कम है, बाप रे बाप, हर मिनट में भय लगता है, आप देर के बाद क्या पूछते हैं। एक छोटी सी चिड़िया भी रास्ता में 2 दाना चावल का पड़ा होगा वो उसको खाने के लिए आएगा, 2 दाना चावल पड़ा है बोल उसको लेता है, लेकिन वो चिड़िया आएगा उसके लिए तो बड़ी बात है, वो आएगा उसको चुगने के लिए 4 बार इधर उधर इधर इधर देखे, क्यों देखता है इधर इधर, डर भाई भी कोई ना लगा इधर, तब हम लोग तो जितने बड़े हैं इतने सोफिस्टिकेटेड भय हैं, कहते हैं ना बांस जितने बड़ा होगा बोल भी इतना बड़ा होगा, जो जितने बड़े हैं उनका इतने भय ज्यादा है, जितने बड़े रहते होंगे इतने ज्यादा भय होगा, और साधारण लोग वो कभी बुलेट प्रूफ पहनते हैं, साधारण वो तो मिनिस्टर लोग होंगे तो बुलेट प्रूफ गाड़ी आगे पीछे पुलिस घर में चलना पड़ेगा भाई, डर पड़ेगा, आप अकेले नहीं जा सकते, जितने बड़े हैं इतने ही डर बढ़ता जा रहा है। त्रायते महतो भया, थोड़ा सा भी इस भक्ति आचरण करो बहुत बड़े महान भय से बचा लेगा। महान भय क्या है हमारे लिए? तो सारे महान भय लगता है, स्टूडेंट बैठे हैं उनके लिए तो महान भय भय रिजल्ट खराब ना हो जाए। अभी परीक्षा का सीजन है, हे ठाकुर जी दो बार सुबह शाम तीन बार ठोकूंगा सब, लेकिन उठा दो काम निकाल दो, हम तो साल भर कुछ किए ही नहीं, अभी आपके चढ़ाऊंगा बहुत कुछ करवा दो। महान भय, आप सबके लिए अपना अपना भय होता है, सबके लिए भय एक नहीं होता, सबके लिए अलग अलग भय होता है। तो जिसके लिए जो महान भय हो सारे महान भय से बात हो जाएगा, सबके लिए एक महान भय नहीं होता, सबके लिए अलग अलग भय है। किसी के लिए थोक में घुसे तो एक भय होता है, जिसे मृत्यु भय है, ये तो सबको है, बाप रे बाप ऐसी बात मत करो, ये तो सबको डरता है। उसके अलावा और भी महान महान भय होते हैं, तो महान भय से बचा ले। भागवत में एक ऐसे प्रसंग आता है, एक चक्रवर्ती सम्राट थे जिनके नाम था भरत महाराज, भगवान ऋषभदेव के पुत्र हैं, भगवान के पुत्र हैं, और उन्हें 100 भाई थे, उनमें से बड़े लड़के थे भरत जी, और उनके पिताजी सारे बेटा को एक बार बुलाकर मीटिंग करके बोलो देखो बेटो ये जो तुम्हारे से बड़ा भाई है उनको मेरे से अभिन्न समझो, मैं नहीं रहूं, कुछ भी मन में शंका हो, कुछ भी प्रश्न हो, कुछ भी आपको गाइडेंस लेना हो उनसे लेना, ये पूरे मैच्योर बिल्कुल समझदार लड़का है, मेरे से कोई कमी नहीं, हर प्रकार से पक्के हैं। साक्षात पिता भगवान ऋषभदेव ने उनको सर्टिफाई किए और ये भरत महाराज राजा बने, पिताजी चले गए छोड़ करके, तो चक्रवर्ती सम्राट बने। सम्राट बने तो ऐसे कोई छोटे मोटे स्टेट के राजा नहीं, पूरे पृथ्वी के, पृथ्वी नहीं पूरे यूनिवर्स के, पृथ्वी तो एक छोटा सा ग्रह है, जितने ग्रह नक्षत्र है सबके राजा बने। इतने बड़े राजा बने तो उनका कितनी बड़ी संपत्ति, कितने उनके राज लक्ष्मी पान प्रतिष्ठा कितना बड़ा होगा, लेकिन क्योंकि इतने भक्त थे भगवान में उनका मन इतना अवरत था, भागवत में शब्द आता है कि पूरी भरी जवानी में युवक अवस्था में उन्होंने ये राज्य लक्ष्मी साम्राज्य छोड़ दिए, राज्य को छोड़ करके जंगल भाग गए, बाबा जी को भजन सब छोड़ दिए, शादीशुदा किए थे, गृहस्थ थे, पुत्र पत्नी घर जायदाद संपत्ति सब अमाप था, कोई शत्रु ही नहीं था, कोई टेंशन ही नहीं था, कोई विपत्ति कोई गड़बड़ी कुछ ही नहीं था, सब सुंदर था, लेकिन भगवान मन लगा था, इसके कारण से ये सारे इंद्र का के संपत्ति भी फिर मारेगा उनके संपत्ति के सामने, इतने ऐश्वर्य इतने भोग सामग्री सबको ऐसे त्याग दिए। भागवत में भरत महाराज के त्याग के लिए एक शब्द दिया गया मालवत, समझ में आता है क्या शब्द दिया मालवत, वत मतलब जैसा, मन जैसा त्याग, मन समझते ना, सुबह सुबह जाते हो ना टॉयलेट में, हाँ आप कोई बड़ा फिस्ट या सडे फिस्ट खाएंगे, अब कल सुबह बाथरूम जाएंगे, बाथरूम से उतर के आएंगे वो दुख करेंगे कि आधा एक किलो वेट लॉस हो गया था, कोई सोचते कभी नो शांति शांति आप सचमुच थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, जब तक वो नहीं जाए तब तक तो जी हराम हो जाता है, अशांति है ना, बहुत टेंशन, अब पेट साफ हो जाए तो अब शांति है। त्यागात सुखम अनंतरम, त्याग से सुख प्राप्ति होता, तो इसी प्रकार ये संपत्ति ये साम्राज्य इस मान सम्मान जब तक थे, जैसे पेट साफ नहीं हुआ जितने आप बेचैन करते ऐसे बेचैन थे, जैसे छोड़ दिए हो शांति चैन के श्वास लेकर बोला आप अच्छा अब निकल गए, और देखा नहीं पीछे मुड़ करके, उनको तो प्लस करना चाहिए, देखा नहीं ऐसे चले गए सब छोड़कर भरी जवानी अवस्था में गए, जाके जंगल में भगवान के मन लगा था, भजन किए, भजन कर रहे थे। एक बार ऐसी घटना हुआ, आपने चोरी कुटिया में अपना भजन कर रहे थे, विघ्न पूजा कर रहे, सेवा कर रहे, जप कर रहे थे, जो छोटा सा विघ्न रखे थे सारा ग्राम में कुछ रखे होंगे, तो सुबह से उठ करके स्नान करने झरना में जाते थे, जंगल में स्नान करके फूल चुनते थे। आपको तो 3 बजे 4 बजे उठ स्नान नहीं कर सकते, सूरज उग जाए, जंगल है ना, कोई इलेक्ट्रिक लाइट थोड़ी है, सूरज उग जाए दिखाई पड़े रास्ता घाट, तब जाएंगे जंगल के पानी में नहाना होगा, तो जाकर स्नान करके कुछ अच्छे अच्छे फूल चुन करके दलिया में लाते थे, ठाकुर जी के फूल कुछ ला करके सेवा पूजा कर देंगे, धर्मशाला सेवा करते थे अपने कुटिया में। तो एक दिन सवेरे सवेरे स्नान करके फूल तोड़ रहे थे जंगल में, और पास में एक झुंड हिरण चल रहे थे। हिरण तो ग्रुप में रहते हैं हमेशा, झुंड के झुंड, वो घास खा रहे थे, तो मैंने घास में उनको तो महाविरक्त पुरुष थे, चल रहे वो अपने फूल तोड़ रहे थे। तो क्या हुआ, हंस जंगल था, एक शेर आया, शेर आकर के दहाड़ा, वो अपने गर्जना किया, शेर की गर्जना सुने तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो हिरण के झुंड और घास चल रहा था, सारे पूछ और कान खड़े हो गए, डेंजर सीखा शेर की आवाज, सारे खड़े हो गए, इधर उधर देखने लगे, भाई इसको कहते सुनते ही तुरंत सिग्नल उठ गया सारे। दूसरी बार जब शेर के दहाड़ आवाज सुने और कोई नहीं रहा, एक सेकंड के अंदर स्टेडियम खाली, सब तुरंत भाग पड़े, इतने जोर से हिरण जो भागते हैं, फुल स्पीड में भागते हैं, सब भाग करके कहां चले गए जंगल के अंदर दिखाई नहीं पड़े, लेकिन उन हिरण के झुंड के अंदर एक हिरणी थी जो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, उन बिचारी भाग नहीं पाई, दौड़ करके गई जैसे जैसे जैसे, अब सामने एक नाला भरा था, और बाकी सब हिरण चकाचक फटाक से छलांग मारे और नाला को कूद कर भाग दो चले गए। वो बेचारे नाला के तर गई, अब पानी भर रहा नाला में, उनके ऊपर इतने हिम्मत इतने वेट बढ़ चुका है, अभी वो छलांग नहीं लगा पाए। आप सोच रहे क्या करूं, छलांग लगाओ तो मरूं, अब नहीं लगाओ तो शेर का दहाड़। तीसरे बार जो शेर का दहाड़ सुना, बोला ही तो मर जाऊंगा, खा जाएगा मुझे, पूरी आग बंद करके ताकत ला करके लगाई छलांग, इतने भय हो गया, भय के मारे कूद गई। जब छलांग लगाई तो उसका परिणाम क्या हुआ कि वो जब करते के दौरान उसके बच्चा प्रसव हो गया, वो पानी में गिरा, वो उस तरफ गिरा, नाला को क्रॉस करके उनके शरीर उस तरफ गिरा और मर गया, डेड बॉडी, पेट फट गया उसको, तो मर गया उस तरफ पड़ कर, और उनके जो सद्य प्रसव शिशु वो पानी में गिर गया, छोटे हरिण के शावक, हिरण के शावक। ये सारे घटना, ये फूल तोड़ रहे थे उनके सामने ही घट रहा था, किसके सामने, महाराज भरत को देख रहे थे, खंच जंगल है, कोई नहीं, निर्जन प्रदेश, और सारे हिरण भाग करके कहां दृश्य हो गए, शेर तो कहां आवाज किया, पास में दिखा नहीं पड़ रहा, लेकिन उनके सामने उनके पास में एक डेड बॉडी हिरनी मरी हुई है, उनके सद्य जात शिशु पानी में बह रहा है, और कोई नहीं उनको रुकाने वाला, और तो ऐसे ही बेचारा अभी अभी जन्म हुआ, और पानी की धारा बह जाएगा तो ऐसी मर जाएगा है। तो भरत जी सोचे अब क्या करूं, मेरे सामने उसको अगर मैं सहायता ना करूं तो मेरे मर जाएगा, मुझे दोष नहीं लगेगा, मुझे देखते देखते मेरे सामने बचा सकता हूँ, इतना ही तो पानी है, घुटने तक मैं उठ करके उठा सकता हूँ, अगर नहीं उठाएगा हृदय तो मर गया, कोई उठा ही मेरे सामने हो जाएगा तुम मरते। तो सोच करके विचार करके फूल के डालिया रख करके पानी में घुस गए, घुस करके उस हृदय के सावक हाथ से उठा लाया, पहला उठाकर ला करके ऊपर में धूप में रख दिया। अब हिरण तो शाकाहारी है, मांसाहारी थोड़ी है, बस 2 घंटे के अंदर खड़ा हो गया, उसके सावक बच्चा खड़े होकर दौड़ने लगा। हम जैसे मछली अंडे खाने वाले को तो 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा उठकर खड़े होकर दौड़ने में, उनको तो 2 घंटा धूप लगे उठकर दया। अब चलने लगा तो भरत जी अपने फूल को खोल कर के चले उनके पीछे पीछे चला, क्योंकि वो तो अपने माँ बाप को दिखाई नहीं, अरे जन्म हुआ तो पानी में गिरा दिखाई नहीं, माँ को जानता नहीं बेचारा, वही उनको उठाकर लाए, उस चक वही मेरे सब कुछ है, वही मेरे पिता है, वही मेरे पापा, तो उनके पीछे पीछे चल पड़ा। और जब छोटे छोटे अभी नवजात हिरण शावक होते हैं ना, इतने प्यारे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं ना देखने में भी, उनके चाली में भी इतने सुंदर होते हैं, और उनके पीछे पीछे तो उनको पूरा माना कि वही मेरे सब कुछ है, वही मेरे माँ है, वही मेरे पिता, उनको माना, उनके पीछे पीछे गया उनकी कुटिया में और जाकर वहीं बैठा। तो भरत जी देखे वो मेरे पीछे पीछे जाकर उसे हाथ चल कर आया, तो मैं बचाया, उसको देना पड़ेगा उसको, तो जो भी प्रसाद थोड़ा बहुत दिए वो शुरू से जन्म से प्रसाद खाना शुरू किया। हम खाया तो जंगल में जब जाते थे उनके साथ जाता था, जब जाते थे उनके साथ आता था, जब पूजा करते थे उनके पास बैठता था, जब लोग जप करते थे उनके पास बैठते थे, उनके लिए सेट करके किस उनके शरीर के साथ बैठता था, तो इतने उनके साथ संबंध हो गया। और पूरे निर्जन वन प्रदेश कोई नहीं, तो एक हिरण की छोटा शावक उन्हीं के साथ बढ़ने लगा, और देखते देखते बड़ा इतने संबंध प्यारा हो गया उनके साथ, और 5-7 साल का हो गया, वो तो जवान हिरण हो गया, मस्त काफी करके तगड़ा हिरण हो गया जवान, और वो हो गए बूढ़े भरत जी। लेकिन इन दोनों में इतने संपर्क गाढ़ हो गया कि कहना जाए, जो सारे आपने राज्य लक्ष्मी साम्राज्य सारे पुत्र परिवार को त्याग देकर आए थे, अब इस केस में हरिणी के साथ उनके एक हिरण के साथ उनके प्रेम हो गए, संबंध हो गए। तो अब हिरण कभी कभी अभी यम हो चुका है जीवक हिरण, कभी जंगल में जाता है, जब तक नहीं आता तो उनके मन नहीं लगता, भजन नहीं कर पाते, बोलते अरे नहीं आया, तो उनका कुछ नामकरण किए होंगे, तो उनको नाम लेकर पुकारते थे, जब पुकारते वो आ जाता था, आज बड़े खुश हो जाते, देखा ये मेरा बाप से बुला है, आ गया ना, आकर बैठता था उनके पास में निपटता था, तो बहुत प्रसन्नचित हो जाता, फिर चला जाता था, फिर आवाज करके फिर आ जाता था, अपना माता पिता सब कुछ उन्हीं के मानता था, उनके पास आता था। फिर तो एक दिन ऐसे हुआ, वो हिरण गए थे जंगल में चरने के लिए चला जाता, और आंधी तूफान आया, हटात आंधी जोर से हुआ, बारिश हुआ, तूफान लंबे समय तक चला, हिरण आए नहीं, भरत जी ने बेचैन हो गए, अरे आए नहीं क्या होगा, कहां से रुकेगा, इतने बड़ी बड़ी आंधी चल रहा है, इतनी बारिश हो रहा है, क्या हो रहा होगा, उनका बड़े चिंता, कितने आवाज करे आंधी तूफान को सुनाई पड़ता है। शाम तक चला, वो बेचारे तो खान पान सब उनका ठप हो गया, बोले क्या होगा क्या होगा, शाम हो गया रात हो गया आए नहीं, तो बड़े चिंता में पड़ गए, बोले कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, कोई फंसता नहीं गया, कोई बेड फेड उठ कर उसको गिरा तो नहीं, मर तो नहीं गया, अब मन में नाना प्रकार की चिंता। तभी जमाने में इलेक्ट्रिक लाइट तो था ही नहीं, टर्च भी नहीं था उनके पास, हो जाएंगे तो लाइट के नाम पर क्या लिए थे उन्होंने, मसाल होता ना, मसाल समझते, एक डंडे में तेल में कपड़ा बांधते थे उसको जला, तो उसमें क्या देखता, क्या देख, वो इसी को लेकर के चले, झिमझिम बारिश भी हो, सारे रास्ता घाट पानी भरा हुआ है, अंधकार है, रात्रि का अंधकार है, पानी भरा हुआ है, बारिश के समय है, कहीं कीचड़ कहीं पिछला, उसी में बूढ़े चलने लगे, लाइट लेकर के उनके नाम पुकारते पुकारते, तो कहाँ है, रात्रि में ढूंढते ढूंढते गए, अब बारिश में जो पानी रास्ता घाट में भर जाता है, पता तो नहीं चलता कहाँ गड्ढा, कोई पत्थर कोई क्या, पता नहीं चलता, पानी तो समझ नहीं आता, पता नहीं चला कोई गड्ढा में पैर फंस गया, चोट लगा, गिर पड़े, वहीं पे उनका समाधि, कोई बन गया हाथ पे आहार लिए, तो ड्राइवर को भी बोले वो हिरण तो आया नहीं, उनका काम नहीं, लेकिन मरते समय भी वही चिल्ला चिल्ला के मरता है, तू कहां है रे, जन जन बाप स्मरण भाव त्यजंती अंते कले वर, भगवान फॉर्मूला दिए, अंत समय में जिस जिस भावना आएगा उसी से प्राप्त करेंगे। आप हिरण को ध्यान करते करते शरीर छोड़े, आप क्या बना, एक हिरण बने, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट, इतने बड़े भक्त थे, इतने बड़े भक्त थे लेकिन आसक्ति हो गया हिरण में, अब हिरण जन्म हो गया ना। बड़े गए थे घर द्वार सब राज्य त्याग करके भजन करने के लिए, भजन करते करते फसले गड़बड़ हो गया, हिरण की रक्षा करते हिरण को रक्षा करते करते अब स्वयं का हिरण की भावना में आए और आगे क्या जाए बन गए हिरण। अब क्या भजन करें, पशु के शरीर में भजन होगा, पशु को क्लास सुनने के लिए आएगा नहीं, क्या करेगा चांस। लेकिन क्योंकि उन्होंने थोड़ा बहुत भजन किए थे, कुछ भी भजन किए थे पूरा नहीं किए, उसके प्रभाव के कारण भले हिरण मर गए लेकिन हिरण के शरीर में भी उनकी सारी याददाश्त रहा। हिरण जन्म हुआ इसे कहते हैं। उन्होंने जो जंगल में तप कर रहे थे वो नेपाल में था, पुनः आश्रम अब गए होंगे पोखरा नेपाल में, वो काकबड़ी है उसके पास वो जंगल, वही पे भरत महाराज तप कर रहे थे, वही पे हिरण के जो घटना हुआ था ना वही पे हुआ था, काकबड़ी के पास भरत आश्रम है, वहां बुला आश्रम है, बुलस्त आश्रम, वहां पे उन्होंने हिरण को ढूंढते ढूंढते शरीर छोड़ा उस जंगल में, तो जन्म उसका हुआ उत्तराखंड में, तो वो कोई जंगल में। लेकिन उनका याद रहा था कि मैंने एक दिन ऐसा था, ऐसा हुआ, इसी कारण से मेरा ऐसे पतन हो गया। तो हिरण के शरीर में वो सारे हिरण के झुंड के साथ जाते थे, उनके साथ असंग रहते थे, मिलते नहीं थे, सब घास खाते थे, वो घास नहीं खाते थे, रोते थे, बड़े अनुताप करते थे, पश्चाताप करते थे, तपस्या करने लगे। क्या तपस्या, सूखे पत्ता खाएंगे, घास खाएंगे, कोई हरी घास नहीं खाते थे, वो रोते थे, इस प्रकार करते हमसे याद आता था मैंने क्या गलती किया, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, ऐसे गलती करते करते एक दिन तो उनको ऐसे लगा जब युवक अवस्था हो गया उनका, बोले ना मुझे कुछ करना पड़ेगा, आपने झुंड को छोड़ करके अकेला उत्तराखंड से चलते चलते चले गए वापस वही नेपाल बॉर्डर में, काक बड़ी बंदर में चले गए, वही काली गंडी के पास जा करके वही जाकर पहुंच गए, पूरा याद था उनका रास्ता सब याद, वही पहुंच करके वही गंडू की नदी में, इसमें श्री शाग्राम मिलते हैं, उस गंडू की नदी में हिरण के शरीर में प्रवेश करके कंठाग्रत जल में इतने ठंडा पानी में प्रवेश करके ऊर्ध्व मुख करके भगवान को चिंतन करते हुए शरीर छोड़ दिए। भगवत स्मरण हिरण के शरीर में गंडू की नदी में प्रवेश करके भगवत चिंतन स्मरण करके शरीर छोड़ दिया। तब उनको फिर ब्राह्मण शरीर मिला, ब्राह्मण शरीर मिला, आओ लेकिन इतने चौकन्ना हो गए, इतने अलर्ट हो गए, इतने सावधान हो गए, तो उन्होंने जन्म होने से पहले सावधान हो चुके थे, बोले चलो इस बार मिस्टेक नहीं करना, मुझे गड़बड़ी नहीं करना, ये गड़बड़ी करके कुछ क्या करेगा, अब नहीं होगा। ये तीसरी बार को उन्हें इतने सावधान हो गए, जन्म होने के बाद पूरे शक्ति सामर्थ्य था, बातें मुंह नहीं खोले, मुख बंद करके रोल किए, आप कर सकते थे। एक बार जन्म के बाद मैया को मां के पापा को पापा की पिता को नहीं बोले, नहीं एक बार नहीं बोले, मुझे तो शब्द उच्चारण नहीं किए, उनको लगा माता पिता को ये शायद बहरा है, क्योंकि जो बहरा वही तो बोल नहीं पाते, बोले बहरा भी है और मुख भी है, मिश्रा चढ़ रही है, चढ़ रहा तो कुछ समझता नहीं, बैठा तो बैठा रहेगा, खाने तो खा लेगा, सुना तो सो जाएगा, कुछ किसी बोलना पड़ता नहीं, बोले एक जड़ भी है, पहरा है, मुख है, जड़ है, तो पिता माता बड़ा टेंशन बढ़ गया, ऐसा लगता हो गया क्या करें। ब्राह्मण के घर में जन्म हुए थे तो उनके पिताजी के और भी कितने पुत्र थे, सबको उन्हें पढ़ा लिखा करके जनी संस्कार कराए, जो अपना काम नाम किए, बेचारे बोले ये मेरे बेटा है, छोटा बेटा, सबसे छोटा बेटा, माँ बाप को बड़े प्यारे होते हैं, बोले इसका क्या होगा जिंदगी, शादी विवाह करेगा तो कैसे गुजार करेगा, तभी जाना तो लोग व्यक्ति ऐसा करते नहीं थे, तो कैसे करेगा गुजार चलेगा, ब्राह्मण बालक है, अगर जनी फिल्म डालते थोड़ा मंत्र जंत्र तंत्र पुरोहित काम कर ले, किसका कोई श्राद्ध माता कर ले, किसका सत्यनारायण पूजा कर ले, कोई दूसरा रुपया मिल जाएगा, अपना गुजरान चल जाए, तो इसलिए उसको जनी दे दी। जनी संस्कार देते, थोड़ा मंत्र सिखा देते, बोले गायत्री मंत्र याद करो सीख जाए, संध्या मंत्र की वंदना सीख जाए, तो आपने पूजा वूजा करके कमाई कर लेंगे। तो खूब उनके पिताजी ने 6 महीना तक डेली 2 बार 3 बार पास में बैठा बैठाकर दिखा दिखाकर सिखाए। भरत जी महाराज कहते हैं कि मेरे पिताजी की बड़े दुर्भाग्य था, मुझे सिखा देते, मुझे क्या सिखाएंगे, मैं 3 दिनों से सिखा रहा हूं, मुझे क्या सिखाएंगे। वो सोच रहे थे मैं हमको सिखाना चाहता हूं, लेकिन मैं तो सीखने वाला नहीं था, मैं तो सिखाई नहीं। वो पिताजी के बड़े दुर्भाग्य के देहांत हो गया। कैसे दुर्भाग्य में देहांत हुआ देखिए, भागवत बोलता है अच्छे तरह से मरना कैसा है, मरना सबको है, किस प्रकार से अच्छे मृत्यु होता है। बोले मेरा पिता का बड़े दुर्भाग्य था इसे मर गया। वो पूछे कैसे ना, आप सारे बेटे लोग उनके घर में आए, बेटों के बेटे सारे पोते पुत्र वधु पौत्र वधु सारे परिवार के सामने सभी के प्रेजेंट में मेरे पिताजी ने शरीर छोड़े, ये उनका सबसे बड़े दुर्गति हुआ। ये बात कौन कह रहा, भरत मानस कह रहे। उनके पिता से बहुत अच्छे विज्ञ ब्राह्मण थे, सब सदगुण था, लेकिन क्या करे इतने गृहस्थ थे, मरते समय में सारे परिवार वाले आ गए, उनके जितने 5 बेटे उनके बहू उनके बेटे उनके बेटी ये रिश्तेदार उसे सारे सब कहां से आ गए। पहले जमाना तो फ्रेंड फ्रेंड के दूर नहीं जाते थे, जहां थे सब आ गए घर में, पिताजी दादाजी नाना जी सब आ गए, जो जो संपर्क में सब पहुंच गए, सभी के सामने अपने घर में सबको देखते देखते सब सारे छोड़े। ये सबसे महा दुर्गति हुआ। अभी हम लोग समाज किसी समाज संसार में रहते हैं, बोलते हैं जो भी हो उनका शरीर छोड़ा, उनके बेटा भी आया था अमेरिका से आ गया, बहू भी इधर से आ गई, पोता भी इधर से आ गया, सारे आया सबके सामने गया, बहुत अच्छा। लेकिन भरत महाराज को महा दुर्गति हुआ, बिचारे बिचारे पिताजी का बड़ा दुर्गति हो गया। इस प्रकार अच्छा, इस प्रकार मरना दुर्गति ना, तो सदगति किसे मन में से होता है। धृतराष्ट्र महाराज का नाम सुने ना, महाराज धृतराष्ट्र थे तो अंधे, तो जैसे भी कैसे राजा तो रिजेक्ट हो गए, लेकिन फिर भी राजा बने, भैया छोड़ के चले गए राजा बने, तो सोचे चलो मैं तो ऐसे काम चलाऊं राजा बना, मेरे बेटे कम से कम राजा बनेंगे, इस आशा में सुखी होते थे। लेकिन बेटे पूरे सेंचुरी ओवर हो गए, अलाउट हो गए, अलाउट हो गए ना सारे, एक भी नहीं बचे, पूरे 100 को 100 अलाउट, राज्य गया, पुत्र गए, सम्मान गया, राजपद सब गया, हार करके बूढ़े उम्र में आकर के किसी को मारने के लिए पूरे जिंदगी प्रयास करते थे, कितने कष्ट दिए थे, उन्हीं के घर में आकर के रहे अंत समय उनका घर। बीदुर जी आए, बोले भैया बोले अवस्था में खूब गाली दी उन्होंने, खूब गाली देकर टोक करके बोले चलो ना कि वो मरने से पहले सदगति हो जाए, तुम्हारा मृत्यु सुधर जाए ना, कैसे मर जाए, ये मरेगा ना मरा युधिष्ठिर आदि मरे, कितना टेक केयर करते, मेरे लड़का भी इधर देखभाल नहीं करते थे, इतने बढ़िया मारे केयर टेकिंग करते, बहुत बढ़िया खान पान व्यवस्था सब, बोले मूर्ख कहीं गए व्यवस्था कर रहे, चलो मेरे साथ तुम्हारा अंत भला करना चाहिए। तो उनको गाली दे करके कैसे भी जैसे छीन के घर से निकाल लिए, रात रात घर से निकाल करके बोले जाओ जंगल में, किसी बुलाने पर भी कोई नहीं आ पाएगा, ऐसी जगह पर उनको मरवा दिए। और बोले कि ये उनका सदगति हो गया। इस प्रकार मृत्यु बड़े सदगति देने वाले, और घर में रह करके सारे परिवार ताते पोते बेटा बेटी तो महा भागवत तो कहते हैं कि भरत जी महाराज थोड़े बहुत भक्ति किए थे, इसके कारण से हिरण की पशु जैसे शरीर में भी उनके याददाश्त था, उन्हें उसे कंटिन्यू कर पाए, आगे चल करके उनका चेतना इतने सतर्क रहा कि जन्म से ही उन्होंने सुधारा, अपने आप को संभाल के रखे, बिल्कुल मुख बंद करके बात ही नहीं, जड़वत, जैसे कोई सुनता नहीं बोलता नहीं, इसे बाहर के ऐसे मतलब नहीं कि नहीं सुनते थे बोलते थे, बिल्कुल सत्य था बोलने का सुनने का, लेकिन रिएक्शन ऐसे किए कि अपने माँ बाप भाई बंधु भी नहीं समझ पाए। जब 30 साल की उम्र हो गया और घर वाले से निकाल के बोले चल कोई काम तो नहीं बहरा जड़, पिताजी माताजी मर गए तो घर में कोई भाई बहन नहीं लेंगे। एक बार उनके भाई बहन बोले क्या भाई है उसको खिलाने के, कुछ काम नहीं करते क्यों खाने देंगे, बोले चलो कुछ तो काम हट्टा कट्टा है उसके काम तो करे, तो ले गए उनको बोले देखो ये खेत है यहाँ से मिट्टी उठाकर यहाँ डालो, खुल करके एक चम्मच दिखा दी मेरे यहाँ से उठा यहाँ डालो, तो बोला ऐसे सर निकालो, तो उनके सामने उठा करके दो थोड़ी उठा के लगा डाला, तो बोले ऐसे करते रहना हाँ करूँ, तो देखते रहे जैसे भैया चला गया जहाँ से मिट्टी लगा तो वहाँ से मिट्टी लगा उल्टी, वो आकर के शाम को देखते राम 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 ये क्या कर दे, तो समझा नहीं लोग मुझे क्या करूँ चिल्लाने से क्या फायदा सुनने के लिए, तो वो अपने आप को सोचते कुछ सुन नहीं रहा सब सुन रहे तो क्यों चिल्ला तो सुनता नहीं तो बोलता नहीं, सारे गड़बड़ करते बोले काम करता हूँ तुझे कभी कोई काम नहीं लगाऊंगा, काम में लगा रहे सारे चौपट कर देता तूने, चलो तुझे खाना भी नहीं देना काम भी नहीं करता तो यहाँ से निकाल रही उसको, ऐसे घूमते थे एक व्यक्ति दूसरे गांव में देखा इतने हट्टा कट्टा शरीर है कुछ काम नहीं करता, चलो काम नहीं करेंगे लेकिन हम जानते हैं जैसे तो खेती बाड़ी होता है तो एक पुतला बना करके बनी बनाई ऐसे पुतला जैसे को रखते थे कि चिड़िया फिड़िया गाय खाए नहीं आए करते ना ऐसे बेगुन आदि कुछ खेत में, तो बोले पुतला क्यों बना गया तो पुतला जैसा है उसी को बैठा देने लगे उसको देख कर कोई चिड़िया पशु नहीं है, तो बोले बैठे राजी हो गए तो दो रोटी खिलाने दे दी हमारा जीवन जाके बैठा थी बैठ गया आपने बैठा था उसको नहीं उठा बैठ रहा, जो पशु आए चिड़िया आए बोले पुतला है ना आदमी आदमी तो है पुतला होने से फिर भी डरते आदमी है कुछ करता नहीं वो आए खाए कोई कुछ नहीं करता सारे खाए कोई कुछ नहीं बैठा सब उजाड़ा थे खाए कुछ नहीं करते बैठे इतने बोले यार इसी काम के लायक भी नहीं किसी संसार के किसी काम के लायक नहीं रहे तुम सब छोड़ दिए। एक बार तो वो जंगल में घूमे कोई घाम रहने के जंगल में वो जंगली लोग होते हैं दिल को वो लोग पूजा करते हैं देवी पूजा तो बलि चढ़ाते हैं तो उनका उस्ताद उनको बोला देखो इस बार नर बलि देना होगा तो सारे सब अपना आशा सिद्ध हो जाएगा सब ऐसा हो जाएगा घरों के लिए चाहिए ढूंढ कर लेकर आओ। तो बेचारे एक आदमी को पकड़ करके लाए थे बांध बुंध कर लेकर आए थे और उनको रखे थे कान उनको बलि चढ़ाया जाएगा ऐसे जैसे निकल गया फंस गया भाग के चला गया आए ढूंढते ढूंढते मिले नहीं खूब गाली पड़ा कैसे रख नहीं पाए मिला था इतनी देर से भोग माता जी के भोग चला गया क्या करे अब कैसे अपने होगा मिला नहीं खूब डांट पड़ा तो दोबारा ढूंढ रहे थे कोई और मिल जाए आके देखे वो बैठा हुआ बड़े सतर्क से चिप चिप कर आए दस पांच बोले हिलना नहीं भागना था ये तो मोटा मोटा कुछ शरीर है तो पतला पतला दुबला पतला नहीं तो भाग गया बिल्कुल होशियार से आए अपने हिसाब से हाथ कसकर के बांध लिए पैर बांध लिए वो बांध ली वो हुई डोल छोड़ ली उनका आश्चर्य लगा कुछ नहीं नो पड़े हाथ बांध लिए कोई रिएक्शन थोड़ा इधर उधर नहीं करता ना बोलता ना कुछ भी नहीं बोली क्या है जिंदा सर तो है कुछ रिएक्शन नहीं होता तो थोड़ा देर बांध बुंद कर खींच कर लिए लेकिन कुछ नहीं बोलता चलता है आराम से तो थोड़ा लोच किए तब भी चलता है पूरा ढीला छोड़ दिए तब भी चलता है सारे निकाल दिए रस्सी तब भी चलता है गजब का है ये तो छोड़ दिए भाग गया ये तो चलता है आराम से कोई बहना नहीं कुछ नहीं लेकर गए उसको उसको बोले तुझे गला कटा जाएगा बोले कि समय आ रहा बलि का जब बलि चढ़ाने से पहले उनका विधि होता है खूब खिलाएंगे पिलाएंगे पूछे और कुछ चाहिए क्या सारे आशा पूर्ण करके फिर गला काटेंगे तो पूछे खाने के लिए हम खाओ क्या खाए बोलता था जो सारे प्लेट सब खाया बैठ गया आराम से बोले अंदर खा चल लो तो सारे उनके सामने वो तलवार बजा रहे थे सिंदूर लगा रहे थे सारे बाज बजा रहे थे कोई भय नहीं एक परसेंट भाई नहीं, खूब डरते थे खाया कस कर भाई उसे खाया जो बिना बढ़िया मान सब पर खाया मारा पहनाया उसको लेकर के आए बदसना पर काली माता के सामने लेकर के आए आया बोले तुझे गला काटा जाएगा तो दिल तो चढ़ है बोलता नहीं वो कुछ हम अच्छा बात वो तो लोग काटे इधर गला हाँ बहुत अच्छा बोले यहां से गला को रख एक पत्थर का बदसना बोले गला को रख दिया ना काट वो लोग आश्चर्य हो गए थे हम तो क्या डरते नहीं किसी प्रकार में उनके शरीर को बिगाड़ नहीं दिखाई पड़ता क्यों सचमुच उनको समझ रहे थे मारने के लिए ले रहे आपको कितने भी हो आपको बोलेंगे कि आपको गला काटेंगे आपको खिला कर खाएंगे अरे खाऊंगा क्या लेकिन ये कष्ट खूब खाए खूब पहले उसको बोले प्रणाम करो पहले लगा दिए बिल्कुल डरते नहीं यहां तक सारे बाजे बजाए और तलवार उठाए मारने के तब भी नहीं डरते क्यों उनको पूर्ण विश्वास था ये मुझे क्या मानेंगे मुझे अगर मरना होगा तो मरना होगा मुझे नहीं मरना होगा तो ये क्या मरा गला काटेंगे अभी पद्धशिला में गला को रख करके तलवार उठा चुका है तब भी विश्वास नहीं कर रहे कि मैं मरूंगा तो क्या मुझे मारेंगे तो अभी माल खा कर आया मैं क्यों मरूंगा बिल्कुल विश्वास नहीं मरूंगा कर इतने था पूर्ण विश्वास था कि वो मुझे कुछ नहीं कर सकते निडरते सचमुच पूरे बाजा हरि बोल हुलहुल के साथ में तो उनका जो उस्ताद था तलवार उठाए मारने के लिए तो चोट मारते मारते चोट उनके गला में नहीं लगा उस देवी मूर्ति से स्वयं देवी प्रकट हो गई एक क्षण से प्रकट हो गए थे उनके हाथ से जो उनके कई पीढ़ियों से उनका पूजा किए थे उनके हाथ से तलवार छीन करके समुदाय होकर उनको ही काटा गला जितने बाजा बाजा रहे थे जितने देखने वाले थे सारे गांव वालों को एक एक करके हजारों साल देवी स्वयं कई पीढ़ियों से उनको पूजा कितने किए थे बेचारे सबके काटते मारते थे और वो बेचारे उठ गए कोई उन कुछ बोले नहीं इतने मर्डर हो गया आचा कुछ भी नहीं किया कहा उठकर फिर चलते पेट तो भरा था उठे चलते जाके जंगल में घूम रहे कुछ नहीं बोले भाई इतने मार रहा था रुको रुको अच्छा नहीं बेचारे मुझे कुछ मिला मिला ना कुछ नहीं बोले मन अद्भुत था उनके रिएक्शन जाके जंगल में घूम रहे थे और एक राजा था कश्मीर का वो भागवत क्लास सुनने के लिए जा रहा था तब जब उन्होंने तो कहा था नहीं वो सवारी में जा रहा था पालकी में पालकी में कहार जुटे हुए तो कंध में रोड़ के ले जा रहे थे उनको तो किसी का लगा तबीयत खराब हो गया बोले सरकार उनको तबीयत खराब हो गई ना राजा है किसी को पकड़ के लगा दो तो किसी को पकड़े हैं जंगल में देखे ये हटा कटा घूम रहा है जंगल में बोले बड़े तगड़ा है मुझे था लाकर लगा दो लाके उनको बोले समझ गए कोई जड़ है उनको सिखाए तो बोले हाँ बोले चले क्या मना क्यों कर रहा कंधे में लेके ले गया कंधे में लेकर के और चला रास्ता में तो चिट्ठी देखा तो पैर उठाकर इधर रहेगा इधर से पैर उठाकर इधर रहेगा आप लोग तो सवारी बैठे आजकल तो शादी के समय लोग भी लोग बैठते हैं बाकी तो नहीं बैठते सवारी के अंदर पालकी समझते ना क्या होता है लकड़ी का होता है इसे उसे कंधे में नाच तो उसी में बैठे होंगे जो आदमी उसको ढोकर चलता वो अगर नाच करेगा तो आपको पीछा लगेगा सारे रिएक्शन आपको पीछे इधर होते रहे अब राजा बैठे अब ये पैर उठाते राजा तो अभी गाली सुन करके अभी मुंह खोले इतने साल तक जन्म शब्द मां लोग सारे सुन रहे थे, समझ रहे थे, अभी बोले बोले एक दो बातें बोले, राजा नीचे उतर करके बच पड़ गया। आप बोलो बताओ, उनके सामने कितने लोग की मृत्यु हो गया, नहीं बोल रहे थे। आप एक बात क्या बोलेंगे? तो इस प्रकार जो भजन की रहस्य है, अगर थोड़ा सा भी सच्चा भजन करते हैं तो उसका इतने बड़े प्रभाव है, चाहे पशु बनो पक्षी बनो किसी भी विपद आ जाए, आपको बिल्कुल निर्भय करके आपको सारे समझ करके आगे बढ़ा दिया जाए, उसके हानि प्रत्यवाय विनाश हो ही नहीं सकता, किसी भी इसी जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, किसी जन्म में नहीं। तो इतने बड़े फायदा की चीज जो भक्ति है उसको करने के लिए राजी है ना, नहीं है उसको? और उसको करने के लिए कोई खर्चा भी नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कोई मेहनत करना पड़ेगा नहीं, मेहनत करने के लिए नाम जब तक बहुत भारी कष्ट करना पड़ता है, पसीना उतरता है नहीं, कोई लागत लगाना पड़ता है नहीं, इतने आसान है और इतने प्रभावशाली, इतने फायदेमंद है, उसी को करना चाहिए, है ना नहीं? तो इसलिए भगवान ने इतने सारे प्रकार से समझा करके ये श्लोक बताते हैं कि मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए। अगर सोचते हैं कि कुछ फायदा हो तो मैं करूं, तो उससे बढ़कर तो फायदा और कुछ हो भी नहीं सकता। पूरे संसार में इसी प्रकार कोई कर्म नहीं जिसका ऐसा गुण हो। तो इसको सुन करके समझ करके सभी को केवल भक्ति ही करना चाहिए, भजन करना चाहिए। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे। ठीक है, आपका समय बहुत हो गया नहीं, आप लोग तो बोलते ठीक है, अब आप भोग लग गया होगा, साथ बातें जाएंगे नहीं तो और कुछ लग लो है, आप लोग बैठे हैं इसी में, मैं ही बैठा, आप लोग उठेंगे तो हम लोग उठ जाए, है ना? कुछ बोलना है क्या पूरा हो गया?
Thank you.
Hey, Krishna. Hey.